आयु को हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जाना था, लेकिन आर्या, युवराज और प्रिया के साथ उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ निशांत भी आरफ के घर पर पहुंच चुका था। वो आज ही आरफ की पत्नी यानी आयु का काम तमाम करना चाहता था। वहां जाकर निशांत ने उन सबको अपना परिचय आरफ के दोस्त के तौर पर दिया था। आरफ का जिक्र होने पर आर्या गुस्सा हो गया था और निशांत को वहां से जाने को कहा। इस बीच आयु वहां पहुंच गई। आयु को लगा कि निशांत पार्टी मांगते हुए उसके पीछे घर तक आ गया है। वहीं उसकी बातें सुनकर बाकी घर वालों को लगा कि आयु पहले से ही निशांत को जानती है। आर्या ने आयु की तरफ देखा और सिर हिलाकर हैरानी से पूछा, क्या आप इस इंसान को जानती हैं? हाँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब यही मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था और मेरी हेल्प करने के बदले इन जनाब को थैंक्सगिविंग पार्टी चाहिए, आयु ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। फिर उसने निशांत को अपने बैग से कुछ पैसे निकाल कर देते हुए कहा, ये लो, खुद पार्टी कर लेना और आगे से मेरे घर पर मत आना और न ही मेरा पीछा करना। ये तुम्हारा घर है? निशांत ने आयु को घूरते हुए पूछा। हाँ, अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये मेरा ही घर होगा ना? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ नहीं आए हो, आयु ने थोड़ी बेरुखी से जवाब दिया। आयु से बात करने के बाद निशांत ने आर्या की तरफ देखा तो उसने उसकी तरफ मिन्नत भरी आंखों से देखते हुए नामे सिर हिला दिया था। वो नहीं चाहता था कि निशांत आयु के सामने आरफ का जिक्र करे। निशांत कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी आर्या ने आयु से कहा, हाँ, ये आप ही का पीछा करते हुए यहाँ पर आया था, डोंट वरी, आपकी तरफ से मैं ये पार्टी दे दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने इसे पैसे दे दिए हैं, चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे सर्जरी के लिए देर हो रही है, आयु ने झट से जवाब दिया और जाने को हुई। तभी आर्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, आपकी जगह दूसरा डॉक्टर आ गया है तो आज आपको आराम करना चाहिए, तुम्हें मुझसे पूछे बिना ये नहीं करना चाहिए था, वो मेरा पेशेंट था आर्या, आयु ने नाराज होते हुए कहा। आयु और आर्या को साथ में देखकर एक पल के लिए निशांत को लगा कि शायद आर्या और आयु के बीच कोई रिश्ता हो। उसके दिमाग में उठ रहे सवाल उसे पागल कर रहे थे और अब वो किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं था। निशांत ने गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए उनके बीच में कहा, मुझे नहीं पता कि ये लोग तुमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ बल्कि किसी का मैसेज लेकर आया हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये घर आरफ खुराना का है और मुझे उसकी पत्नी से मिलना है। निशांत के सब कुछ बताते ही एक पल के लिए वहाँ शांति छा गई। युवराज, प्रिया और आर्या को लगा कि आरफ का नाम सुनकर आयु इमोशनल हो जाएगी, लेकिन आयु निशांत के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने निशांत की आंखों में देखते हुए सख्ती से पूछा, बोलो, तुम्हें क्या कहना है और क्यों मिलना है तुम्हें आरफ खुराना की पत्नी से? मैं ही हूँ आयु आरफ खुराना। आयु ने खुद को आरफ की पत्नी के तौर पर परिचय दिया तो निशांत के कदम वहीं जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया वहीं पर रुक सी गई हो। निशांत कुछ नहीं बोला, उसकी पलकें भीगने लगी थी। इतने सालों बाद उसे वो लड़की मिली थी जो उसे पसंद आई थी और वो निकली भी कौन, उसके दुश्मन की पत्नी जिसे वो मारने के लिए वहां आया था। निशांत को चुप देखकर आयु ने फिर से तेज आवाज में कहा, सुनिए मिस्टर, आपको मुझसे क्या काम है? तुमने अभी कहा कि तुम्हें आरफ खुराना की पत्नी से मिलना है तो वो तुम्हारे सामने खड़ी है, जो भी कहना है कहो। आयु की आवाज सुनकर निशांत को होश आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आरफ का दोस्त हूँ और दुबई से आया हूँ, उसकी आपसे बात नहीं हो पा रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आरव ने माहिरा से शादी कर ली है। वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता था कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। निशान ने जो भी मैसेज बताया था उसे सुनकर आर्या, युवराज और प्रिया के होश उड़ गए थे, लेकिन आयु पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो लगभग एक हफ्ते पहले ही आरव से मिलकर आई थी। आयु ये सबके सामने बात नहीं बता सकती थी। उसने घूरते हुए निशांत की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, हो गया तुम्हारा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा आरव किसी से शादी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मजबूरी में उसे उस औरत के साथ जाना पड़ा होगा, लेकिन शादी करना और खुशी खुशी उसके साथ आगे बढ़ना ऐसा वो कभी नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर वो किसी और से शादी कर भी लेगा तो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, क्योंकि वो तो मुझे किसी के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। बोलते हुए आयु की आवाज़ भारी होने लगी थी। भले ही वो जानती थी कि निशांत झूठ बोल रहा था, पर फिर उसके इमोशंस उस पर हावी होने लगे थे। अचानक आयु को अपने सामने सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई थी। आर्या, युवराज और प्रिया तुरंत आयु को संभालने लगे। आर्या ने निशांत की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ यहाँ से और आगे से यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। अपने उस फ्रेंड को जाकर भी बोल देना मेरी मॉम को परेशान करना बंद करे। चला गया है ना वो हमारी जिंदगी से, तो फिर क्यों फिर से दखल देने के लिए आ रहे हैं? प्रिया ने रोते हुए कहा, ये झूठ बोल रहा है, मैं अपने आरफ को अच्छे से जानती हूँ, वो आयु को लेकर बहुत सेंसिटिव है, वो कभी किसी से शादी नहीं करेगा, आयु को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे दूर होना पड़े। आर्या ने आयु को गोद में उठाया और कमरे के अंदर लेकर चला गया था। युवराज और प्रिया भी उसके साथ थे। वहीं निशांत अब वहां अकेला रह गया। उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था, ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने पैर पटकते हुए कहा, आखिर इन्हें एक दूसरे पर इतना यकीन क्यों है, इतने सालों से दूर हैं, पर फिर भी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे सालों से साथ रह रहे हों। शायद यही वजह है कि माहिरा अब तक इन्हें अलग नहीं कर पाई। लेकिन माहिरा, जो तुमने नहीं कर पाई वो मैं करूंगा। तुम आसानी से गिव अप कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं करने वाला, खासकर उस शख्स के लिए तो बिल्कुल नहीं जो मुझे पहली नजर में पसंद आई थी। फिलहाल के लिए निशांत का वहां रुकना सही नहीं था, इसलिए वो वहां से चला गया। वहीं आयु के बेहोश होने पर आर्या उसके कुछ टेस्ट कर रहा था। आर्या ने आयु के ब्लड सैंपल लिए और उसे तुरंत टेस्ट के लिए लैब में भिजवा दिया था। उसने युवराज और प्रिया की तरफ देखकर कहा, मॉम बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी, इन्हें आराम की जरूरत है। तुम गुस्सा मत करो आर्या, मेरा बेटा कभी आयु के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता, प्रिया ने आर्या की आंखों में गुस्सा देखकर कहा। आर्या ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, पर जो शख्स यहाँ आया था वो झूठ क्यों बोल रहा था ये मुझे समझ नहीं आया। किसी भी हाल से वो डैड का दोस्त नहीं लग रहा था। उस लड़के के बात करने के तरीके से ही समझ आता है कि डैड ऐसे इंसान को कभी अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। कभी अंकल उसके साथ है तो वो किसी और को दोस्त क्यों बनाएंगे। मुझे तो ये उस औरत की चाल लग रही है ताकि वो आयु को कमजोर कर सके। अब जब वो आरफ को अपने जाल में फंसा नहीं पाई होगी तो उसने आयु को निशाना बनाया होगा, युवराज ने गुस्से में कहा। मुझे भी यही लगता है, आर्या ने उनकी बात पर सहमति जताई। फिर उसने कुछ पल रुककर कहा, मैं मॉम के ब्लड सैंपल लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उनके होश में आने पर मुझे कॉल कर दीजिएगा और उन्हें कुछ खिला दीजिएगा। आर्या आयु का ब्लड सैंपल लेकर कहाँ से जा चुका था, वहीं युवराज और प्रिया अभी भी आयु के साथ थे।
युवराज ने प्रिया से कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इससे अच्छा मैं जेल में रह लेता तो कम से कम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। वो औरत फिर भी आरफ का पीछा नहीं छोड़ती, शायद तभी आरफ ने हमसे अलग होने का फैसला किया ताकि हम सुकून से जी सकें, और हम अब तक उसे गलत समझते आए हैं। न जाने मेरा बेटा वहाँ किस हालत में रह रहा होगा, प्रिया ने जवाब दिया। वो दोनों आरफ के बारे में सोचकर मन ही मन दुखी हो चुके थे। वहीं आयु को होश आ गया था, लेकिन अभी भी वो आंखें बंद करके सोने का दिखावा कर रही थी। आयु ने अपने मन में कहा, बहुत अच्छी चाल चली है तुमने माहिरा लूथरा, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगी। क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपने आदमी को आरफ का दोस्त बनाकर एक छोटा मैसेज देकर यहाँ भेजोगी तो हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? बस 21 दिन की बात है, उसके बाद तुम सबको पता चल जाएगा कि मेरा आरफ सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो मेरे पास ही आएगा। आयु और आरफ का प्यार ऐसा था कि कोई भी गलत मैसेज या इंसान उनके प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास को तोड़ नहीं सकता था। निशांत को भी कहीं ना कहीं इस वजह से जलन हो रही थी कि उसके इतना कहने के बाद भी आयु ने उसका यकीन नहीं किया। तो वहीं माहिरा भी इतने सालों से उनके प्यार से जल रही थी कि उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी वो आयु के लिए आरफ का प्यार कम नहीं कर पाई। आर्या को गए हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, इतने में आयु की ब्लड रिपोर्ट भी आ गई थी। जब लैब से उसने आयु के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए और उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, आर्या ने ब्लड सैंपल पढ़ने के बाद खुद से कहा। एनी गैसेस कि ब्लड रिपोर्ट में ऐसा क्या है, पढ़कर समीक्षा कर देना।